ओम शांति। इस सेशन में हम कोर्स टू के यूनिट फोर एक्सप्लोरिंग द सेल्फ आत्मा का लेसन देखेंगे। हम सभी का पहला लेसन बाबा के ज्ञान का पहला लेसन है। आप सभी अपने किताबें बंद करेंगे, ठीक है? अगर टेक्स्ट बुक खोल करके बैठे हुए हैं, सभी अपने टेक्स्ट बुक बंद रखेंगे। बोलने के बावजूद भी करते कितने लोग हैं? आदत से मजबूर है। हाँ, बदलना होगा अभी, क्योंकि क्या है, टेक्स्ट बुक खोल करके बैठेंगे तो यहाँ जो हो रहा है उसका एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरा 100% प्रेजेंस चाहिए। ओके, मेंटली फिजिकली तो है प्रेजेंस, लेकिन मेंटली भी 100% चाहिए अभी। ओके, क्योंकि ये सेशन इंटरैक्टिव होगा, नींद नहीं आएगी। नींद करके आए ना सभी? आप हम लोगों का ही है, लेकिन ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स का होगा, आपका एग्जाम होगा इसमें। You'll be alert. Okay. इस सेशन में हम देखेंगे अलग अलग बातें, ऑब्जेक्टिव्स, एनाटॉमी ऑफ द सोल, साइक्लिक प्रोसेस विद इन द सोल, स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, इनेट क्वालिटीज ऑफ द सोल, और फिर बाद में वो सब बातें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सब होते हैं। एनाटॉमी सबसे पहली बात है, एनाटॉमी ऑफ अ सोल। A soul is like a seed which contains all necessary information for its expression when planted in a body. वैसे तो कहा जाता है आत्मा शरीर में है, लेकिन दुनिया वाले भी कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी आत्मा कहते हैं, तो इसीलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है। Soul resides in the body and we are souls, हम आत्माएं हैं जो इस शरीर में रहते हैं, हालांकि हम शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा रहती है, है ना? A soul will take a body according to its karma and संस्कार। अपने कर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार आत्मा अपना शरीर लेती है, अपनी जगह ढूंढ लेती है। Location of a soul, the seat of the soul, वैसे तो कहा जाता है आत्मा भ्रुकुटि के बीच में है, उसको हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे आत्मा भ्रुकुटि के बीच में? कुछ लोग कहते हैं आत्मा हार्ट में है। हार्ट में क्यों नहीं है, क्या बोलेंगे उनको? इस सेशन के बाद आप सभी आत्मा का लेसन करा सकेंगे, ठीक है? हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या? नहीं होता है, है ना? इसीलिए आत्मा हार्ट में नहीं हो सकती। ओके, आत्मा हार्ट में ठीक है, नहीं है, लेकिन भ्रुकुटि के बीच में ही है, क्या प्रूफ है उसका? कुछ होता है तो कहते हैं हाँ मेरे, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरे भाग्य, जब कहेंगे तो हाथ सिर पे जाता है, कपाल के ऊपर ही जाता है, हाय मेरा भाग्य। तो भाग्य वहां लिखा हुआ है, भाग्य वहां लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं दिखाई देता है एक दूसरे का भाग्य अगर लिखा हुआ है तो? वो अलग बात है, मैं बोल रही हूँ कि लिखा हुआ है तो फिर दिखना चाहिए ना, मुझे आपका भाग्य दिखना चाहिए और आपको मेरा भाग्य दिखना चाहिए अगर लिखा हुआ है। कर्म करने वाली आत्मा भ्रुकुटि के बीच में बैठी है, इसीलिए हाथ वहां जाता है कि हाय मेरा भाग्य। तो भाग्य क्या है, डेफिनेशन क्या है भाग्य का? संचित कर्मों का फल, रिजल्ट है, कर्मों का रिजल्ट है, संचित कर्मों का फल है भाग्य। तो इसीलिए भाग्य कोई लॉटरी नहीं है, है ना? तो अपने ही कर्मों का फल है भाग्य, और कर्म करने वाले आत्मा भ्रुकुटि के बीच में है, तो वो जो कर्म करती है शरीर के द्वारा वो भाग्य बन जाता है या दुर्भाग्य बन जाता है, तो सौभाग्य बन जाता है, दुर्भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए वो सभी बातें आत्मा में रिकॉर्डेड है, इसीलिए हाथ वहां जाता है भाग्य को जब भी हम जिक्र करते हैं तो। और दूसरा प्रूफ तो सामने बैठना है तो आंखों में बैठ सकती है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ब्रेन से सभी नर्व्स हर पार्ट में आता है, तो कोई भी नर्व का प्रॉब्लम होता है तो वहां पैरालिसिस हो जाता है। तो ब्रेन से और ये ऑर्गन तक तो कोई भी जो नर्व्स है उसका प्रॉब्लम है तो पैरालिसिस है ना सभी, मतलब उसका मतलब है कि सभी कंट्रोलिंग जो है वो ब्रेन से होता है, और ब्रेन में आत्मा बैठती है ना। और हाँ जी, आत्मा लाइट है, हाँ जी, हाँ कॉन्शियस पावर है, ठीक है। और तीसरे प्रूफ क्या है, आत्मा प्रकृति के बीच में है, बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हिंदुइज्म में महिलाएं तो लगाते ही हैं, लेकिन पुरुष भी जब मंदिर जाते हैं भगवान को याद करते हैं तब तिलक लगाते हैं। ये भी कहावत है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और साइंटिफिकली कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु तो मृत्यु है आत्मा, जैसे मुसलमान है वो आत्मा में नहीं मानते हैं, या फिर वो लोग ये नहीं कहते हैं कि इसके बाद कोई जन्म है, यही लास्ट जन्म, यही एक जन्म है बस, कब्र दाखिल हो जाते कहते हैं। और साइंटिफिकली अगर प्रूव कहना हो तो हाइपोथैलेमस में, अच्छा ये नई बात हम सुन रहे हैं, किसी को पता था ये बात? अच्छा, वही ना, नई बात सभी को सीखने को मिला ना आज। तो प्रैक्टिकल हुआ है तो राइट है, जो एक व्यक्ति प्रैक्टिकली जी रहा है बुलेट हेड में रख करके, सिर में रख करके, तो फिर मैंने प्रैक्टिकल प्रूफ है ना। अजी एक मिनट, आपस में नहीं बोलिए, आपस में नहीं बोलिए, जो भी बोल रहे सभा के, इनकी फिलॉसफी देखे सुनिए। खुला रह गया। अगर सुनने की इच्छा रह गई तो कान लेकिन खुला ही खुला है वो हमेशा। ओके ओके, हाँ जी, वो दोनों पॉइंट्स अलग है, इन्होंने जो बोला और आपके जो बात है तो वो अलग अलग बातें हैं, तो ये कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो साइंटिफिकली ये कहते हैं तो हाइपोथैलेमस जो यहाँ है, ब्रेन के जो पार्ट है, एक पार्ट है हाइपोथैलेमस जो आगे रहता है, तो उसके पीछे जो बीचों बीच स्कल के बीचों बीच जो है वहां आत्मा रहती है। तो साइंटिफिकली कैसे हम कहेंगे कि आत्मा वहां रहती है, वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कैरलियन फोटोग्राफी, है ना। कैरलियन फोटोग्राफी, एक कैरलियन एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने एक कैमरा उसने इन्वेंट किया था, और उसके कारण से उस कैमरा का नाम उसके नाम से जाना गया, कैरलियन फोटोग्राफी, कैरलियन कैमरा। तो वो कैमरा से जो भी हम फोटोज निकालते हैं वो केवल स्थूल जो बॉडी है वो नहीं दिखाई देता, लेकिन उससे जो निकलते हुए जो किरणें हैं वो दिखाई देता है, और वो उन किरणों के कलर्स भी अलग अलग होते हैं अपने इमोशंस के हिसाब से। अगर गुस्से गुस्सा आ रहा है तो वो रेज के जो कलर्स है थोड़ा सा रेडिश आएगा, थोड़ा सा जलसी और ये सब होगा तो ग्रीनिश आएगा, मतलब अलग अलग इमोशंस के अलग अलग कलर्स भी उस कैमरा के पिक्चर के द्वारा हम देख सकते हैं। और वो जो रेज निकलते हैं तो ब्रुकुटी के बीच में से वो स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे सितारा है वहां से स्टार्ट होकर के वो निकलते हैं, तो वो उससे पता चल जाता है कि आत्मा का निवास स्थान ब्रुकुटी के बीच में है ना। तो ये रहा साइंटिफिकल बातें। इन किताब में इतना एलोबरेट नहीं किया है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स दिया है, आत्मा ब्रुकुटी के बीच में है इसके एग्जाम्पल्स। एविडेंस क्या है, हिंदू वुमेन जो है वो तिलक यहाँ लगाती है और मेन जो है वो पूजा के समय वहां लगाते हैं। जूविश लोग टाई द मिनिएचर बुक ऑफ थोरा इन अ टाइनी बॉक्स एंड टाइड टू देयर फोरहेड ड्यूरिंग द रिचुअल्स। जब भी कुछ ऐसे भक्ति के कुछ करना हो तो उनका जो किताब है, उनका स्क्रिप्चर जो है, छोटे रूप का वो जो लेकर के यहां बांधते हैं उस रिचुअल्स में। और क्रिश्चियंस प्लेस होली वाटर ऑन द फोरहेड, जब भी वो प्रे करते हैं तो वो होली वाटर शायद वो सिर पे फोरहेड में लगाते होंगे। द सोल ऑक्यूपाइज नो स्पेस इन द फिजिकल बॉडी सिंस इट इज नॉट फिजिकल, बट इट एनिमेट्स द बॉडी एंड ऑपरेट्स इट वाया द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। कोई फिजिकल जगह ऐसा नहीं है, लेकिन एक निवास स्थान है, लेकिन कहते हैं ना कण कण में वो आत्मा व्यापक है शरीर में, लेकिन आत्मा की शक्ति व्यापक है। आत्मा तो यहाँ है लेकिन वो आंखों से दिखाई भी तो नहीं देता है, तो फिजिकल जगह कहाँ से वो घेर लेगा, कोई जगह नहीं चाहिए उसको, लेकिन वो निवास स्थान वहां है तो सही, लेकिन कोई ऐसे फिजिकल जगह उसको 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की जगह चाहिए वहां, वो खाली जगह चाहिए ऐसी बात तो नहीं है, है ना। डिस्क्रिप्शन एंड फैकल्टीज, अ सोल इज इनविजिबल टू द फिजिकल आई बिकॉज इट इज नॉट मेटीरियल, भौतिक चीज नहीं है, सूक्ष्म चीज है आत्मा, तो इसीलिए इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। थ्रू आवर फिजिकल आईज वी कैन सी ओनली मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स। वी डू हैव अनदर आई समटाइम्स कॉल्ड द इनर आई। आत्मा को कैसे हम देख सकते हैं, थर्ड आई से या फिर इनर आई से, या अनुभव हम कर सकते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं अनुभव कर सकते हैं उसको, इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकते हैं। Through which the incorporeal soul can be perceived as an infinitesimal point of energy, this is the soul. एक शक्ति है, एक एनर्जी है ब्रुकुटी के बीच में, ये हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, फैकल्टीज ऑफ द सोल, कितने अंग है आत्मा के, एक आया, कोई पीछे से कोई एक बोले, तीन है, तो उनको आत्मा का लेसन कराना पड़ेगा, तीन है। ओके, तो मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है, सोचना, और बुद्धि का काम निर्णय लेना, और संस्कार का काम कर्म जो हम करते हैं बार बार करने से, वो संस्कार, हैबिट या आदत, हैबिट या आदत जो जिसको कहते हैं वो संस्कार है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, जैसे शरीर में अलग अलग अंग है, आंख है, कान है, मुंह है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्या आत्मा एक टाइनी पॉइंट है उसमें कैटेगरी है, इस तरफ लेफ्ट साइड वाला माइंड है, बीच वाला बुद्धि है, इस तरफ वाला संस्कार है, नहीं है, तो फिर कैसे कहा आपने कि ये तीन अंग है, मन, बुद्धि और संस्कार, वही मतलब प्रॉपर्टीज है आत्मा के, ये नहीं कह सकते ये अंग है, अंग माना फिर अलग अलग हो जाना चाहिए, अलग अलग दिखाई देना चाहिए, तो आत्मा में ये तीन अंग अलग अलग दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, सुप्रा कॉन्शियस माइंड है, ये सभी बातें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर दिया साइकोलॉजी और साइंस वालों ने, है ना, और भक्ति में भी बहुत सारी बातें आती है, तो बाबा ने इतना सिंपल बना के दिया है हमें कि आत्मा माना मन, बुद्धि, संस्कार है, और उसकी प्रॉपर्टी है बस, कि जब आत्मा जब सोचती है तो उसको मन कहा जाता है, आत्मा जब निर्णय लेती है तो उसको बुद्धि कहा जाता है, तो संस्कारों के प्रभाव में जब आत्मा आती है उस संस्कार कहते हैं बस, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है आत्मा के। दिस पीसफुल सरेन पॉइंट ऑफ सेल्फ अवेयर लाइट एनर्जी हैज थ्री फैकल्टीज दैट आर द सटल ऑर्गन्स फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मन, बुद्धि और संस्कार, इंप्रेशंस कह सकते हैं उसको। और बुद्धि को कहा जाता है तीसरा नेत्र है ना। वो क्योंकि बुद्धि को तीसरा नेत्र क्यों कहते हैं, वो दिखाए, हम विजुलाइज कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, तो इसीलिए उसको तीसरा नेत्र कहा। तीसरा नेत्र कोई और नेत्र नहीं है, बुद्धि को ही तीसरा नेत्र कहा। बुद्धि खुल जाता है, बुद्धि का पटल खुल जाता है, डिवाइन इंटेलेक्ट। जब बाबा आते हैं तो सबसे पहला गिफ्ट हम सभी को क्या देते हैं, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, है ना। तो दिव्य बुद्धि माना अपने आप को समझने की क्षमता, आत्मा को समझने की क्षमता, है ना, परमात्मा को समझने की क्षमता। ये दोनों को हम जब कैसे हम समझेंगे, बुद्धि के द्वारा, है ना। तो उसको दिव्य बुद्धि, दिव्यीकरण, जितना जितना हम गहराई में जाते जाएंगे बुद्धि डिवनाइज होता जाता है। दीज फैकल्टीज ऑपरेट इन कंजक्शन विद ईच अदर इन अ साइक्लिक वे। जैसे मन का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव कर्म पर, कर्म प्रभाव संस्कार पर, फिर संस्कार का प्रभाव मन के ऊपर, ये साइक्लिक इसमें वो कार्य करती है, आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार। अ सोल एक्सप्रेसेस इटसेल्फ कॉन्शियसली और एंड सबकॉन्शियसली। आत्मा जो भी अपनी चिंतन है, अपने आइडियाज है, तो एक्सप्रेस करती है कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। सबकॉन्शियसली माना सुषुप्त अवस्था में एक्सप्रेस कैसे करेगी आत्मा, कॉन्शियस वे में तो ठीक है, जो मैंने सोचा वो मैंने बोल दिया, कर लिया, कॉन्शियस वे में मैंने एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। सबकॉन्शियस वे में एक्सप्रेस करना माना, हाउ डू वी एक्सप्रेस सबकॉन्शियसली, हाउ डू वी एक्सप्रेस सबकॉन्शियसली। हाँ, केवल निद्रा में चलने की बात नहीं है, ड्रीम्स जो भी आते हैं, ड्रीम स्वप्न जो भी आते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हैं वो बाहर आते हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग इट सबकॉन्शियसली। कभी कोई कोई निद्रा में बोलते भी है, है ना, तो बोलने की भी आदत होती है, पूरा स्पष्ट नहीं बोलेंगे, एक दो शब्द बोलते रहेंगे, तो वो क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रहा है, जिसके कारण से नींद में ये सब आदतें हो जाती है, और हमारे ड्रीम्स को एनालाइज करने की आदत हमें डालने की जरूरत है। तब जब हम अपने ड्रीम्स को समझेंगे तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो अच्छी रीति समझ में आता है। तो इसलिए ड्रीम्स को समझना बहुत जरूरी है अपने। द सोल इज कॉन्शियस ऑफ द एक्सटर्नल मेटीरियल वर्ल्ड थ्रू द फिजिकल सेंसेस। आत्मा का फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन कैसे है, क्या मीडियम है फिजिकल वर्ल्ड के साथ करना कम्युनिकेशन या कनेक्शन का, पांच सेंसेस है, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टच। ये पांच सेंसेस के द्वारा आत्मा इस संसार के साथ कम्युनिकेट करती है। एज द सोल परफॉर्म्स द एक्शन थ्रू द फिजिकल बॉडी इट एक्सपीरियंसेस द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू द फिजिकल बॉडी, सम अकर्स इमीडिएटली एंड सम लेटर। माना आत्मा निर्लिप्त है कि नहीं है, लेपशेप है या निर्लिप्त है। भक्ति मार्ग में कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा को लेपशेप नहीं लगती, केवल शरीर को लगता है लेपशेप। लेपशेप माना आत्मा जो काम कार्य करती है, जो एक्शंस बिहेवियर करती है, उसका रिजल्ट शरीर को भोगना होगा, आत्मा को नहीं भोगना है। माना आत्मा निर्लेप, इम्यून टू एक्शंस कहते हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आत्मा ही काम करने के कारण से, कार्य करने के कारण से उसका रिजल्ट भी आत्मा भोगती है, तो सोल इज नॉट इम्यून टू एक्शन, तो जो वो कार्य करती है उसका रिजल्ट तो भोगना ही, द सोल हैज टू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स ओन एक्शंस, तो वो भोगना ही पड़ेगा। और भोगना कैसे है? शरीर के द्वारा, शरीर के बिना आत्मा भोग नहीं सकती है, तो इसीलिए शरीर के द्वारा आत्मा भोगती है। ईच एक्शन विच द सोल परफॉर्म्स लीव्स इंप्रेशंस ऑन द सोल, दीज इंप्रेशंस आर कॉल्ड संस्कार। हर कर्म जो आत्मा करती है वो इंप्रेशन छोड़ती है, तो वो उसको संस्कार का नाम दिया। द सोल एंड बॉडी आर बोथ म्यूटेबल एंड सो बोथ आर इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय एक्शन टाइम एंड एक्सपीरियंस। आत्मा और शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, वो ऐसा नहीं है कि वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। खुद की विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अलग लोग दूसरे जो जिन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं उनका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ती है। डिफरेंसेस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी, आत्मा और शरीर के बीच क्या अंतर है, ये बहुत सहज है। आत्मा बीइंग है, बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग है ना। आत्मा लाइट है, बॉडी ओपेक है, माने स्थूल चीज है। इमॉर्टल एंड मॉर्टल, सेल्फ अवेयर एंड अनअवेयर। आत्मा को सभी सेल्फ अवेयर होते हैं क्या? सभी आत्माएं सेल्फ अवेयर होते हैं? सभी आत्माएं सेल्फ अवेयर होते हैं? जानवर की बात नहीं कर रही हूं, इंसान की बात कर रही हूं। ना जो जो स्वस्थ है, मेंटली स्वस्थ है, फिजिकली स्वस्थ है, उनकी बात कर रही हूं। सभी सेल्फ अवेयर नहीं होते, जिनको आत्मा का ज्ञान है उनको सेल्फ अवेयरनेस होता है, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता। और हम भी जिनको आत्मा का ज्ञान है वो भी हमेशा सेल्फ अवेयर होते हैं हम, वही इसीलिए 24 घंटा हम लोग सेल्फ अवेयर नहीं होते, आत्मिक स्थिति में स्थित। वो अवेयरनेस जब आता है हमें आत्मा हूं तब हम सेल्फ अवेयर है, लेकिन कर्म करते समय जो अभ्यास करने की बात है कभी कभी छूट जाता है, इतना अभ्यास हमारे अंदर इतना नहीं है अभी भी, है ना। तो सेल्फ अवेयर होना जरूरी है। एटर्नल एंड टेम्पररी, बॉडी टेम्पररी है, एक दिन इसको छोड़ना ही है। आत्मा अनबॉर्न है, ना जन्म लेती है ना मरती है, लेकिन बॉडी बॉर्न ऑफ मैन एंड वुमेन, महिला एक स्त्री के तन में या फिर पुरुष के तन में आत्मा बॉडी लेती है। इनडिस्ट्रक्टेबल एंड परिशेबल, विनाशी है शरीर, आत्मा अविनाशी है। नॉन फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल, ना जल सकती है, शरीर को जला सकते हैं, आत्मा न जलती है न बीगी होती, गीली होती है न कुछ होता है। इनविजिबल एंड विजिबल, देख सकते हैं शरीर को, आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा वेटलेस है लेकिन बॉडी वेट है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग, अलग 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 हर एक का अलग अलग वेट से, है ना। इन्फ्लुएंसेस द बॉडी एंड इन्फ्लुएंसेस द सोल। आत्मा आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ती है ना। जब आत्मा कुछ सोचती है, कुछ इमोशंस है मन में, तो उसका प्रभाव शरीर में पर पड़ता ही है, दुखी है ये है, तो फिर शरीर पर भी उसका असर है। लेकिन शरीर बीमार है तो उसका भी असर फिर मन पर पड़ता है, उसका ही फिर एलोबरेशन है। द सोल इज मी एंड द बॉडी इज माइन, ये द साइक्लिक प्रोसेस विद इन द सोल। कैसे वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, मन बुद्धि और संस्कार का, इसमें दिखाया गया है कि मन का प्रभाव बुद्धि पर, जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि उसके अनुसार निर्णय लेती है, निर्णय लेती है। जो निर्णय हम कर लेते हैं उसके अनुसार हम कर्म करते हैं और कर्म फिर संस्कार बन जाता है और संस्कारों का प्रभाव मन पर पड़ती है ना। तो ये पॉजिटिव अगर साइकिल है तो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव हम सोच रहे हैं तो निर्णय भी हम पॉजिटिव लेते हैं, संस्कार भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव संस्कार का प्रभाव फिर पॉजिटिव थिंकिंग होगा। लेकिन अगर ये साइकिल नेगेटिव होता है तो, और होते 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 साइकिल रिपीट होते होते क्या होता है, वो संस्कार इतना स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वो साइकिल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कोई भी एक पॉजिटिव थिंकिंग किया तो वो स्टार्टिंग है, पहला पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो उसका प्रभाव इंटेलेक्ट पर पड़ा, कर्म पर पड़ा, पॉजिटिव संस्कार बना, धीरे से माइल्ड संस्कार बना, तो उसका प्रभाव फिर मन पर, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है। रिपीट हो गया पॉजिटिव, वो स्ट्रांग साइकिल हो गया। ऐसे ही मेरे अंदर अगर नेगेटिव साइकिल स्ट्रांग है, करते 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 स्ट्रांग हो जाता है, वो जब स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होता है, इंटेलेक्ट अपना काम करना बंद कर देती है, सोचा और किया, तो गिल्ट फीलिंग चला जाता है, तो गिल्ट हम फील करते ही नहीं, अरे ये गलत किया नहीं किया है, तो वो फीलिंग से ऊपर उठ जाते हैं नेगेटिव साइकिल जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इस नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव कैसे बनाए, मेडिटेशन में कैसे करेंगे, क्योंकि ये साइकिल है। अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता उसको पकड़ लेते तो फिर फाइनल रिजल्ट वो चेंज कर सकते थे, है ना। लेकिन ये साइकिल है, विचारों का प्रभाव इंटेलेक्ट पर, इंटेलेक्ट का प्रभाव संस्कार पर, संस्कार का प्रभाव फिर मन पर, ये साइकिल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है, स्टार्ट ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। तो एक को पकड़े तो फिर दूसरा बदले, तो एक को पकड़ने के लिए जाए लेकिन उसका प्रभाव तो पीछे से है ऑलरेडी, उसका प्रभाव नेगेटिव प्रभाव, तो इसको कैसे परिवर्तन करें, इंटेलेक्ट डिवाइन कैसे करेंगे, तो ये साइकिल को शुरुआत कैसे करें, नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल में परिवर्तन करने के लिए शुरुआत कहां से करेंगे। 7 दिन का कोर्स कराना ठीक है, अगर करने के लिए तैयारी नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है 7 दिन का कोर्स। लेकिन जिन्होंने अभी यहाँ इस हॉल में सभी ने 7 दिन का कोर्स किया होगा, सभी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे पहले, सभी ने 7 दिन का कोर्स किया होगा, नहीं किया है, नहीं किया है, कुछ लोग नहीं किया, ओके मेजॉरिटी लोगों ने किया है 7 दिन का कोर्स, ओके जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया है आपका रिजल्ट क्या है संस्कार परिवर्तन का। नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए बस, पीछे वाली बातें याद नहीं करिए, मेरे अभी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए बस। मेरा प्रश्न आपका पर्सनल है, आपका पर्सनल है, एक मिनट नहीं, आपका पर्सनल, ओके शायद मेरे प्रश्न को आपने ठीक नहीं समझा है, तो इसीलिए थोड़ा सुनने की आदत डालेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि 7 दिन का कोर्स करेंगे तो ये सारा पॉजिटिव साइकिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बोला, 7 दिन का कोर्स करना चाहिए तो साइकिल पॉजिटिव होगा बोला, वही 7 दिन का कोर्स हम सभी ने किया है, तो इसीलिए हम आपका पर्सनल प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या यह साइकिल आपका पॉजिटिव हो गया है या नहीं हुआ है। किसी का नहीं सोचिए, आप अपना सोचिए, किसी का नहीं सोचिए, आप अपना सोचिए, आप दूसरों का नहीं करिए ना, आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए ना, हाँ हाँ 50% हुआ है, 50% बाकी है। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट पीछे। ओके ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके आपका बहुत चेंज हुआ है, लेकिन 100% तो चेंज हुआ नहीं होगा ना। तो अभी पुरुषार्थ है, तो इसलिए अगर हमारा पूरा साइकिल 100% चेंज हुआ होगा तो कर्मातीत हो जाते थे, कर्मातीत हो जाते थे। तो इसलिए मेजॉरिटी हमारा सबका परिवर्तन हुआ है। एक मिनट, दूसरों को भी बोलने के लिए मौका देंगे। तो हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। बहुत टाइम नहीं है, बाबा ने क्या बोला है अभी, तीव्र पुरुषार्थी है ना। तो बहुत ये नहीं सोचना बहुत समय बाकी है, नहीं बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना बहुत जरूरी है। बार बार मुरलियों में बाबा ये रिपीट कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनना समय की मांग है ना। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनना बहुत जरूरी है। तो साइकिल की बात हम जब कर, आपको इतना उमंग है बोलने के लिए, आपका एक क्लास रख देंगे बाद में, ठीक है? ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपके साथ चिट चैट ही करती रहूंगी, मैं पोर्शन पूरा कर नहीं करूंगी, ठीक है? तो इसीलिए साइकिल जो एक की बात है, तो इसको पॉजिटिव साइकिल हम कहां से शुरू करेंगे पॉजिटिव बनाने में। अगर कोई भी नेगेटिव साइकिल दिखाई देता है अपने अंदर, तो पॉजिटिव कहां से शुरू करेंगे? कहीं से तो शुरुआत करने की जरूरत है, जो हम संस्कार परिवर्तन कर सके, वो है मन के द्वारा। मन के ऊपर बहुत सारे चीजों का प्रभाव होता है। ये सब बातें जो है वो किताब में नहीं है, आपके पर्सनल के लिए बोल रही हूं, ठीक है? तो ये मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो संस्कारों का प्रभाव तो है ही मन के ऊपर, लेकिन और तीन चीजों का प्रभाव है मन के ऊपर, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं। ये तीन दरवाजे से जो हम अंदर लेते हैं, बाहर देते वो अलग बात है, उसका प्रभाव नहीं, जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन जो अंदर ले रहे हैं उसका प्रभाव है। तो आंखों से जो अंदर ले रहे हैं, कानों से जो अंदर ले रहे हैं, मुख से जो अंदर ले रहे खा रहे हैं, उसका प्रभाव मन पर होता है। तो इसीलिए संस्कार भले मेरा कितना भी कड़ा है, नेगेटिव है, भले कोई बात नहीं, उसको भी परिवर्तन करने की क्षमता हम रखते हैं। बाबा की याद से तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना होगा, इन तीन चीजों को हमें चेक करना होगा, जो हम देख रहे हैं। इसीलिए बाबा बार बार क्यों कहते हैं, संकल्प और समय कैसे व्यतीत करते हैं उसको आप बार टेंशन रखो। तो समय कैसे बिताते, कुछ ना कुछ चीज देखने में, कुछ ना कुछ चीजें सुनने में हम समय बिताते हैं, है ना। तो ये बहुत सेंसिटिव, कुछ भी हम भले नहीं कर रहे हैं लेकिन बैठे हुए हैं, लेकिन हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किस पर हमारा ध्यान जाता है? संस्कारों के आधार से ध्यान जाता है। अगर मेरा संस्कार पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजों के ऊपर मेरा ध्यान जाएगा। अगर मेरा संस्कार नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीजों पर मेरा ध्यान जाता है ना। भले वो सीन एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग रीति से वो देखते हैं। इसलिए दृष्टिकोण हमारा पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हर चीज में दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना हो, तो वो फिर उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। और जो हम सुनते हैं, हर चीज को हम पॉजिटिव ले ले, भले वो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन लेते समय हमने फिल्टर कर लिया, पॉजिटिव ले लिया, है ना। सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन फिल्टर करके मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो वहां फिल्टर्स लगाने की जरूरत है, देखने में और सुनने में, तो ताकि वो गलत चीजें एंटर ही ना करे, क्योंकि एंटर करने के बाद फिर उसको सफाई करूं तो वो डबल काम हो जाता है। है ना, तो इसको फिल्टर करके फिर जब हम अंदर। और तीसरी बात तो बाबा एक तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो बाबा की याद में परमात्मा की स्मृति में जितना हम बनाते हैं और खाते हैं उसका प्रभाव मन पर। तो ये तीन चीज हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे 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 मन शुद्ध होता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा, फिर इंटेलेक्ट डिवनाइज होता जाएगा, फिर संस्कारों में परिवर्तन, उसके साथ साथ फिर मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, माइंड एंड संस्कार्स, माइंड उसका ही फिर एलोबरेट किया हुआ है। द सोल ऑपरेट्स द थ्री सटल फैकल्टीज, वन ऑफ दिस इज माइंड। द माइंड इज डिफाइंड एज अ पावर और एबिलिटी टू क्रिएट थॉट्स, मन के द्वारा हम विचारों को उत्पन्न करते हैं। थिंकिंग इज एन एक्ट ऑफ द सोल, आत्मा का कर्म है सोचना। द सोल्स माइंड इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव क्रिएटिंग थॉट्स, मन हमेशा एक्टिव रहता है, भले वो सो रहे हम सो रहे तो भी मन सोच रहा है, मतलब मन बहुत एक्टिव है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हमेशा वो जिन की तरह काम कर रहे हैं, हमेशा काम कर रही है ना। तो इसमें चार प्रकार के थॉट्स के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और ऑर्डिनरी। वैसे तो फिर नेक्स्ट ईयर एमएससी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां 8 प्रकार के थॉट्स बताते हैं। भले आपको क्यूरियोसिटी है बता देती हूँ, ठीक है, ये चार प्रकार के थॉट्स है ही, और चार प्रकार के थॉट्स है टॉक्सिक थॉट्स। टॉक्सिक मतलब बहुत विषैली, नेगेटिव ही बहुत ये हो जाता है, और पॉजिटिव जब ज्यादा बढ़ जाता है वो है एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प हो जाता है। और वेस्ट थॉट्स तो है ही, न्यूट्रल थॉट्स भी है वहां, न्यूट्रल थॉट्स मतलब कोई ये नहीं ठीक है, हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, जैसे न्यूट्रल हो जाता है। और आठवें प्रकार के थॉट मैं भूल गई, कंपल्सिव एंड रिपीटेटिव वेस्ट हो जाता है, जब जो भी बात हम बार बार रिपीट करते हैं तो वेस्ट हो जाता है। तो आठवें प्रकार के एक और प्रकार के थॉट है, तो मैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। मेडिटेशन इज अ डिसिप्लिन प्रोसेस डिजाइन टू इंस्पायर द माइंड टू प्रोड्यूस पॉजिटिव थॉट्स। मेडिटेशन के द्वारा हम सेल्फ सजेशंस देते हुए हम मन को पॉजिटिव बना सकते हैं। फिर कैटेगरीज बताए गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अनप्रोडक्टिव माना वेस्ट, वेस्ट थॉट्स के बारे में। पॉजिटिव थॉट में आई एम अ प्योर पीसफुल लविंग सोल, नेगेटिव थॉट माना नो वन इज प्योर सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हाट आई डू, दुनिया ही ऐसा है तो मैं एक अच्छा बन जाऊं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इसीलिए ठीक है जय बहती गंगा में हाथ धो लो। अनप्रोडक्टिव थॉट्स मतलब आई डोंट नो वेदर और नॉट आई एम अ प्योर सोल, मुझे पता ही नहीं है, कंफ्यूज है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्योर हूं या नहीं हूं। पॉजिटिव थॉट में वॉट एवर हैपन्स अकर्स फॉर अ रीजन, देर इज अ लेसन इन इट फॉर मी टू लर्न टू ग्रो एंड टू प्रोग्रेस, जो भी होता है कुछ ना कुछ कारण होता है ना। कोई अच्छा होता है तब हम कोई ऐसे संकल्प नहीं करते, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं सोचते, जब बुरा होता है ना तब हम सोचते मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सबके साथ अच्छा होता है मेरे साथ क्यों बुरा होता है। तो ये जैसे एक एथलीट था बहुत अच्छा, जेसी ओवेंस जिसको कहते वो ये था रनर था, तो उसको कुछ साल इसमें हो जाने के बाद, लाइफ गेम्स में हो जाने के बाद वो ओलंपिक मेडल भी लिया, सब कुछ लिया, वो फिर उसको कैंसर हो गया, तो जब कैंसर हुआ तो उसके चेहरे पर उदासी नजर नहीं आई, तो लोगों ने पूछा कि आपको दुख नहीं हो रहा है कि आपको कैंसर हुआ है, आपको ये नहीं है भगवान ऐसे मेरे साथ क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे संकल्प आते हैं, तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जब मैं ओलंपिक मेडल जीता तब मैंने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ही थैंक्स बोला भगवान को कि मुझे ये दिया। तो फिर अच्छे कर्म, अच्छे जो जब भी कुछ होता है, अच्छी घटनाएं जब घटती है हमारे साथ, फिर हम प्रश्न नहीं करते हैं कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसको फिर इग्नोर ही कर लेते हैं। हाँ कुछ हुआ भी था अच्छा, तो वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जब बुरे समय आते हैं तब हम प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो तुम। तो इसीलिए उसको भी मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसको भी मैं अभी उसी इससे इसमें मैं स्वीकार कर, ठीक है मेरे साथ हो रहा है, ठीक है ये भी गिफ्ट है मेरे लिए। तो ऐसे मेंटालिटी को हमें मेंटेन करने की जरूरत है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, दैट हैज अ रीजन फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग, दैट हैज अ रीजन। This should not be नेगेटिव सोचना माना, this should not be happening, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब I will punish the culprit, ये जो भी जिसने भी किया मैं देख लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। फिर अनप्रोडक्टिव थॉट्स माना, why is this happening, it is not good, how could God allow such thing, मतलब सिर्फ चर्चाएं करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करने की क्षमता रखेंगे, कुछ बोलते ही रहेंगे, बिना मतलब के कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं। All thoughts are a form of mental energy that can lead to action through the body. जो भी हम सोचते हैं वो किसी न किसी रूप में कर्म में आएगा जरूर एक दिन। तो इसीलिए उसको हमें वहां ही फिल्टर करने की जरूरत है, जो सोच के लेवल है वहां ही फिल्टर करने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ सोच ही रहे हैं, कर्म में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, एक दिन कहीं ना कोई बीमारी के रूप में बाहर आता है। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, मैं गुस्सा दिखा नहीं सकती हूँ दूसरों के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन है मेरे साथ जो भी हो रहा है लाइफ में उससे मैं खुश नहीं हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो भी बातें अंदर जो दबी हुई है वो बीमारी के रूप में फिर बाहर आ जाता है। तो इसीलिए वहां के लेवल में ही हमें खत्म कर देना है और पॉजिटिव करना है। इफ थॉट्स हैव स्ट्रांग एनर्जी दे विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू एक्शन इमीडिएटली, वो हो जाता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे बाद में आता है। तो इंटेलेक्ट के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या कहते हैं, द बुद्धि और इंटेलेक्ट इज द फैकल्टी ऑफ द सोल विच जजेस थॉट एंड डिटरमाइंस इट्स करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस, वो राइट है या रॉन्ग है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको जज करता है बुद्धि। इट डिटरमाइंस वेदर द थॉट शुड और शुड नॉट बिकम एन एक्शन, इसको हमें एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन बुद्धि लेती है। द इंटेलेक्ट और बुद्धि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी ऑफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बुद्धि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है बुद्धि, आपको नहीं लगता संस्कार महत्वपूर्ण है, बुद्धि को क्यों बोला महत्वपूर्ण? आप जिस पोजीशन में आज है, जिस पोजीशन में आज है वो कारण क्या है, निर्णयों के कारण से, जो पास्ट डिसीशंस हमने लिया है उसके कारण से, डिसीशंस पास्ट डिसीशंस जो हमने लिया है उस कारण से इस पोजीशन में आज हम हैं, राइट? तो वो जो डिसीशन है हमारा, हमारे दिशा को ही परिवर्तन कर लेता है। रोज सवेरे से शाम तक हम कहीं डिसीशंस लेते हैं, सुबह उठते ही चाय पीना है, कॉफी पीना है, दूध पीना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं रोज हम डिसाइड करते हैं, रोज निर्णय लेते हैं और बड़े बड़े निर्णय भी लेते हैं, लेकिन लगातार हम निर्णय लेते रहते हैं, क्लास अटेंड करना है नहीं करना है, बंक करना है जाना है, ये भी तो निर्णय लिया ना, मैं 4 बजे आना है। तो ये डिसीशंस हम रोज लेते रहते हैं, महत्वपूर्ण जो भी डिसीशंस है उसको हमेशा हमारे सामने 3 या 4 रोड्स होते हैं, रास्ते होते हैं, चॉइसेस होते हैं। अगर एक रास्ता को अपना लिया, एक निर्णय ले लिया, तो उस रास्ते से चलना शुरू कर दिया, फिर थोड़े देर जाने के बाद फिर अगर महसूस होते नहीं ये गलत रास्ता है तो वापस तो नहीं आ सकते, कहीं बार हम वापस आ सकते हैं, लेकिन कहीं बार हम वापस नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं, निर्णय नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो इसीलिए जो निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके, जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होता है, क्योंकि एक निर्णय जीवन को पलटा सकता है, जीवन को पलटा सकता है, है ना। तो इसीलिए कहते हैं इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गलत निर्णय बर्बाद कर सकता है ना। तो निर्णय के ऊपर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, इसीलिए बुद्धि को इंपॉर्टेंट कहा। फिर उसके आधार से फिर संस्कार तो बनते ही, वो अलग बात है, लेकिन पूरा जीवन जो है बुद्धि पर टिका हुआ है। बुद्धि को परिवर्तन कर लिया तो सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इफ द इंटेलेक्ट इज वेक देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। यू विल जस्टिफाई डिसऑनेस्टी, एक्सेप्ट इनकरेक्ट असेसमेंट्स एंड बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड इमेजिनरी। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, निर्णय गलत हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं। इफ द इंटेलेक्ट इज वीक द माइंड इज इम्प्योर और फ्रैगमेंटेड, देन द एनर्जी ऑफ द सोल विल जनरेट मेनी अनप्रोडक्टिव एंड नेगेटिव थॉट्स विच देन विल बिकम एक्शंस। तो इसीलिए बुद्धि और मन और बुद्धि दोनों क्लीन और क्लियर चाहिए, मन क्लीन और बुद्धि क्लियर, क्लियर चाहिए। कोई भी मना जाले नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं। बुद्धि, बुद्धि क्लियर, मन क्लीन, साफ सुथरा, पॉजिटिव पावरफुल मन। नेगेटिव और अनप्रोडक्टिव एक्शंस विल बी रिफॉर्म्ड विच आर इन अपोजिशन टू द कॉन्साइंस, देयर बाय फॉर्मिंग नेगेटिव संस्कार्स। नेगेटिव संस्कार्स बन जाते हैं उसके कारण से। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस स्विच, हाँ, ये सब बातें फिर और ही सहज कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस, अगर मेरा कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस है, स्मृति मेरा आत्मिक स्मृति है, तो फिर लाइट का बल्ब जो है वो ब्राइट हो जाता है। और बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक्चुअली वो जो पिक्चर है तो यहां आना चाहिए था, वहां चला गया, पता नहीं कैसे चल के चला गया। तो ये जो बल्ब है तो वो यहां आना चाहिए था। ये सोल कॉन्शियस जब होते हैं, आत्मा जब सोल कॉन्शियस होती है, तो वो उसका लाइट पूरा जला हुआ है, पूरा ब्राइट है। लेकिन आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस में है तो फिर उसका लाइट पूरा डिम है, पूरा डिम है, वो डिम भी नहीं कह सकते, पूरा बुझा हुआ है, हाँ, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आत्मा का कॉन्शियसनेस हमेशा बनाए रखना चाहिए, तो फिर वो बत्ती जली हुई होगी हमेशा बुद्धि की, जितना हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो गुण, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, वो आते जाएंगे। केवल स्मृति और विस्मृति की बात है बस, एक एक पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो आत्मिक स्मृति में ऑटोमेटिकली आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस स्विच केवल स्मृति और विस्मृति का खेल है हमारा जीवन, तो इसलिए आत्मिक भाव में, आत्मिक स्थिति में होना बहुत जरूरी है। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट इज टू रेगुलेट योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। यू होल्ड योर सेल्फ इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ आइदर ऑफ द टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। One is the experiential identification with the soul, with the self as a soul. बुद्धि का काम है स्मृति या विस्मृत हो जाना, body consciousness या soul conscious में रहना। To be soul conscious means that there is both intellectual and experiential consciousness of the self as a soul. केवल समझ नहीं है, आत्मिक स्मृति में जब रहेंगे केवल वो समझ नहीं है लेकिन अनुभव भी है आत्मा का, तो उसको कहते हैं स्विच्ड ऑन स्टेज। टू बी बॉडी कॉन्शियस मीन्स द सेंस ऑफ द सेल्फ एज अ सोल हार्डली एग्जिस्ट, आत्मिक भाव ही नहीं रहता, तो इट इज कंपेयर्ड टू बी स्विच्ड ऑफ। एज द अवेयरनेस मूव्स टुवर्ड्स बॉडी कॉन्शियसनेस देन द लाइट ऑफ द इंटेलेक्ट बिकम्स डिमर एंड डिमर एंड एट लास्ट स्विचेस ऑफ। तो इसीलिए हमेशा आत्मा का दीपक जलते रहना चाहिए, बुझने के बाद फिर उसको जलाना फिर मुश्किल है। तो इसीलिए हमेशा जला रहना चाहिए। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, कौन सा तेल और कौन सा डालना है, ज्ञान का, ज्ञान और योग का घृत, और ये पेट्रोल, पेट्रोल से दीपक जलता है, घी से जलता है, घी का दीपक बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, है ना। तो इसलिए खुशबू भी अच्छा आता है और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो घी का दीपक, घी कौन सा है, ज्ञान और योग का, है ना। कॉन्ट्रास्ट ऑफ सोल एंड बॉडी अवेयरनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल, कॉन्शियसनेस ऑफ अ सेल्फ एज अ सोल। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं और देहिक भान में रहते हैं, उसमें अंतर क्या है। आत्मिक स्मृति में रहने से वर्च्यूज, गुणों का अनुभव कर सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस में एंटी वैल्यूज आ जाते हैं, सोल कॉन्शियस में डिटैच्ड ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में कॉट अप इन व्हाट्स हैपनिंग, छोटी छोटी बातों में बुद्धि जाती रहती है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसमें ही बुद्धि भटकती रहती है। सेल्फ अवेयर आत्मा की स्मृति में और बॉडी कॉन्शियस में, नॉट सेल्फ अवेयर, इंट्यूटिव एंड ग्रॉस। इंट्यूटिव माना प्रेरणाएं आती रहती है, और ग्रॉस माना बहुत स्थूल, इंट्रोस्पेक्टिव, अंतर्मुखता होती है आत्मा आत्मिक स्मृति में, दैहिक भान में ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस ईगो, इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड, अंतर्मुखता और बाहरमुखता, रेस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव। रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन में क्या अंतर है, रेस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव में प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्स माना सोच समझ करके फिर उसको रेस्पॉन्ड देना, रिएक्शन माना कुछ हुआ तुरंत मैंने सोचे बिना समझे बिना कुछ बोल दिया कुछ कर दिया, करने के बाद फिर पछताना, पछताना, तो ये रिएक्शन है। सोल कॉन्शियस में पीसफुल, बॉडी कॉन्शियस में रेस्टलेस। आत्मा प्योर है लेकिन बॉडी कॉन्शियस में इन्फ्लुएंस में आते हैं। कोई एक साकार मुरली में बाबा ने ये कहा था, आत्मा निर्लेप नहीं है लेकिन आत्मिक स्थिति निर्लेप है। इसका मतलब समझते हैं, एक मिनट, आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप नहीं है लेकिन आत्मिक स्थिति जो है वो निर्लेप है। आत्मिक स्थिति निर्लेप माना किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ना, किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ना, माना आत्मा के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है ना, लेकिन जब आत्मिक स्थिति में जब हम स्थित होते हैं, कर्म करते समय भी जितना ज्यादा हम आत्मिक स्थिति में होते हैं उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। जैसे जीवन मुक्त अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था माना किसी का भी प्रभाव, जो निंदा स्तुति मान अपमान से भी स्थिति ऊपर है हमारा, है ना। तो ऐसे आत्मिक स्थिति में भले वो शरीर भोग रहा है, भले हम कर्मिक अकाउंट के कारण से मुझे कुछ भोगना हो रहा है, दुख हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर नहीं, करना ही है, भोगना ही है, भोग रहे हैं, लेकिन उतना दुख अनुभव नहीं हो रहा है। तो क्योंकि कर्म के लेप शेप से तो कोई मुक्त नहीं है, उससे तो हमें सभी को गुजरना ही पड़ेगा, गुजर तो रहे हैं लेकिन उसका दुख ज्यादा नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकला हुआ जैसे लग रहा है, तो किसी किसी के ऊपर तो इतना पहाड़ जितना समस्याएं होंगी, फिर भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है ना। ये है निर्लेप अवस्था। तो आत्मा निर्लेप नहीं है लेकिन आत्मिक स्थिति जो है वो निर्लेप। लेकिन किसी किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको पहाड़ जैसा बना देते हैं, ओ इतना सारे प्रॉब्लम है, ये वो है सब, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी है। यही बहुत मतलब ज्यादा कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी के डिफरेंसेस सभी बताए हुए हैं बुक में, आप देख सकते हैं उसका डिफरेंसेस। फिर आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन सोल कॉन्शियसनेस। एक मिसाल इस किताब में दिया हुआ है, बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति का रिस्पॉन्स एक ही परिस्थिति में क्या होता है और सोल कॉन्शियस व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ फायर इन द किचन, रसोई में अचानक आग भड़क गया या गैस का सिलेंडर फूट गया, कुछ भी हुआ तो वहां आग हुआ। व्हेन वी आर इन सोल कॉन्शियसनेस वी आर कूल काम इनसाइड एंड योर एक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेट, मतलब कूल काम मतलब पूरा ही ठंडे नहीं है कि समझ है कि हाँ आग हो आ रहा है तो फिर उसके लिए क्या करना है, बैलेंस्ड है, तो इसीलिए कूल माइंड में सोच करके उस अनुसार करते जा रहे हैं, उसको कैसे बुझाना है क्या करना है सब कुछ करते हुए उस अनुसार कर रहे हैं। यू मूव टू सेफ प्लेस एंड रिमेन डिटैच्ड, हम अच्छी जगह पे सेफ जगह पर जाएंगे और जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। इन अ डिटैच स्टेट एंड इंसिडेंट सच एज अ फायर इन द किचन अलर्ट्स योर अटेंशन बट कॉजेस नो फियर और पैनिक। अटेंशन है, अलर्ट है, आप जो करने की जरूरत है सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं है, चिल्ला नहीं रहे हैं या फिर पैनिक ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सोल कॉन्शियस स्थिति में। वही बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति, व्हेन यू आर बॉडी कॉन्शियस यू गेट अनॉयड एंड रिसेंटफुल, बहुत परेशान हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, यू पैनिक फ्रीज देन रश अराउंड, भाग करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में नहीं आता है, इतना डर लगने लगता है, भाग रहे हैं सब जगह पे। यू ब्लेम अदर्स फॉर बीइंग लेट एंड किसी को फोन किया आने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाया, आया नहीं, ये ब्लेम करे, चिल्ला रहे क्यों नहीं आया अभी तक, ये बढ़ रहा है ऐसा वैसे, मतलब इतने सारे हंगामा हो रहा है। यू फॉरगेट वेयर द एक्सटिंग्विशर इज एंड यू डिले अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, पानी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, पानी निकाल करके डालना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, जो करने की जरूरत है वो नहीं हो रहा है, तो ये सब बॉडी कॉन्शियस स्थिति का प्रभाव होता है। तो इसलिए सोल कॉन्शियस जितना हम होते हैं, जो समय के अनुसार जो करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। एक्यूरेट रिलेशनशिप ऑफ सोल एंड बॉडी, द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द बॉडी इज बैलेंस्ड व्हेन देयर इज सोल कॉन्शियस। सबसे गहरा संबंध है आत्मा और शरीर का, क्योंकि बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के शरीर के साथ आत्मा का संबंध है, तो बहुत गहरा संबंध है और 24 घंटा हर मिनट आत्मा ही शरीर के साथ है ना, तो बहुत गहरा संबंध है। तो इसीलिए जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में होंगे तो इसका जो संबंध है आत्मा और शरीर का जो संबंध है वो राइट संबंध होगा, उसका कनेक्शन जो होगा वो बैलेंस्ड होगा और राइट संबंध होगा। The consciousness is inverted if you think the body is you and the soul is yours. अगर हम ये सोचे ये शरीर मैं हूं और सोल मेरा है तो वो रिवर्स हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। The most important exercise and effort of will is to keep on checking, am I soul conscious? Am I aware of who and what I am? और डू आई फॉरगेट ऑफ फॉर एनी मोमेंट, बार 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 ये स्मृति लाने की जरूरत है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्मृति में बार बार जितना हम लाते जाएंगे मेरा कनेक्शन जो है इस शरीर के साथ राइट होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बाबा के शब्दों में उसके अधीन हो जाते हैं, हम राजा नहीं बने रहेंगे, अपने ही कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनना है हमें तो आत्मिक स्मृति में रहना है, कर्मेंद्रियों के अधीन जब हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण से। व्हेनेवर यू फॉरगेट योरसेल्फ यू नो व्हाट हैपेंस, यू गेट इनटू ट्रबल और यू कॉज ट्रबल। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण से मैं समस्या में पड़ जाती हूं या फिर दूसरों के लिए मैं समस्या बन जाती हूं, तो इसीलिए सोल कॉन्शियस स्थिति अनुभव करना बहुत जरूरी है। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू चेंज समथिंग दैट हैज बीन अ हैबिट थ्रू आउट योर लाइफ, केवल इस जन्म का नहीं है लेकिन 63 जन्मों का ये संस्कार है, हैबिट है बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना, है ना, तो उसको परिवर्तन करना इतना इजी नहीं है। तो प्रैक्टिस बार 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 वो अभ्यास जितना हम करते जाएंगे सोल कॉन्शियसनेस वो उतना होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं बार पेशेंस ना होने के कारण से, कहीं यहां ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखा है कि एक कपल है का था, तो वो बहुत एंथुजियास्टिक थे कि जैसे ही ज्ञान में आए, साधन का कोर्स लिया, भगवान को पहचान लिया, बहुत खुश थे, उमंग उत्साह में आ गए कि हम एक साल में बाबा से मिलने जाना है। तो पूरा पवित्रता को अपनाया, सब कुछ कर रहे थे, अमृत वेला उठना, मुरली क्लास सुनना, सब कुछ करना। तो मैं जब बाबा को मिलूंगा तो मुझे ऐसा साक्षात्कार होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक अनोखा अनुभव होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन था बुद्धि में। तो एक साल उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब बाबा से मिले उनको ज्यादा कुछ अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, दादी के तन में बाबा आए, ये हुआ, सब कुछ हुआ, तो लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो आउट ऑफ द वर्ल्ड जो अनुभव होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन था, वो नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना होने के कारण से फिर वो ज्ञान छोड़ दिया। बाबा को मिलके गए एक मास में, फिर सेंटर पे आना बंद। तो माना पेशेंस, इम्पेशेंट, अभी अभी रिजल्ट चाहिए, जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं अभी 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 रिजल्ट चाहिए। नहीं, उसके लिए भी टाइम लगता है ना, क्योंकि आत्मा के कितने तरह से जन्मों का संस्कार है, सब कुछ निकलते 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 रिफाइन होते, जो अनुभव हम चाहते हैं वो अनुभव तक पहुंचने में तो टाइम लगता है ना। लेकिन इतना तो है, ये जो राह अपनाए हुए है वो राइट है, इतना तो है, रॉन्ग तो नहीं है रास्ता। तो रास्ता तो राइट है, तो कभी ना कभी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, लेकिन लगातार करने की जरूरत है, और थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धीरज, करते जाए करते जाए करते जाए, फिर बाद में वो अनुभव होगा। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड टू योर सेल्फ वॉट यू आर फीलिंग, यू हैव द ऑप्शन टू चेंज योर थिंकिंग। हम जैसे चाहे वैसे हम सोच सकते हैं। टू इट डज नॉट मीन दैट यू शुड नेग्लेक्ट योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल वेलबींग। इसका मतलब नहीं केवल आत्मा 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 को के बारे में ही सोचते बैठे शरीर का संभाल नहीं करना चाहिए, ऐसा है नहीं। शरीर भी वैल्यूबल है, शरीर भी वैल्यूबल है, क्योंकि संगम का समय को पूरा हमें उसका लाभ लेना है, तो शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जितना शरीर को चाहिए उतना तो देना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। जितना नींद की आवश्यकता है शरीर को उतना देने की जरूरत है, जितना भोजन की आवश्यकता है शरीर को उतना तो देना ही चाहिए। अगर वहां थोड़ा कमी कर लिया तो फिर शरीर के साथ हिसाब किताब बन जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि लोगों के साथ हमारा हिसाब किताब है, प्रकृति के साथ हिसाब किताब है, लेकिन ये भी बात है हम अपने शरीर के साथ भी हिसाब किताब बना लेते हैं। तो इसीलिए शरीर के साथ कम से कम हिसाब किताब हो। तो इसीलिए शरीर को जो चाहिए जैसा चाहिए उसको उतना तो देने की जरूरत है। डिपेंड होता है, हर एक का साइकिल अलग है। 18 आवर्स होते रहेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे, 5 आवर्स कह सकते हैं या 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स इज मैक्सिमम। तो इसीलिए 6 घंटा मैक्सिमम, 8 घंटे ये सब है दुनियावी लोगों के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, योगी। तो इसलिए जितना, ये नहीं कि बाबा कहते हैं ये निद्रा जीत बनो, तो निद्रा जीत माना नींद ही नहीं करो, ऐसी बात नहीं है। निद्रा जीत का मतलब ही अलग है, निद्रा जीत माना नींद पर पूरा कंट्रोल, जब चाहे मैं सो सकती हूँ, जब चाहे मैं उठ सकती हूँ। मैं ये सोचूं कि मुझे 3 बजे उठना है, अलार्म बज रहा है, अलार्म भी रखा तो भी फिर भी मैं उसको बंद करके सो रही हूँ, वो निद्रा जीत की निशानी नहीं है। जब चाहे मैं सो सकती हूँ, जब चाहे मैं उठ सकती हूँ, वो पूरा कंट्रोल है नींद पर। और नींद तो करना ही चाहिए, निद्रा जीत माना बिल्कुल नींद नहीं करना, ऐसी बात नहीं है ना। तो इसलिए बैलेंस की जरूरत है। गिव योर सेल्फ प्रॉपर फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, एंड अवॉइड अब्यूजिंग योर बॉडी थ्रू योर ओवर वर्क, स्लीप डिप्रिवेशन, ठीक है, ओवरवर्क भी नहीं कर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, शरीर का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, भोजन ढंग से नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं करना है. इट डज नॉट मीन दैट यू आर अटैच टू योर बॉडी, इट मीन्स दैट यू अप्रिशिएट इट्स वैल्यू. शरीर के बिना आत्मा क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती. शरीर है तो फिर बाबा का अनुभव हम कर रहे हैं ना, तो शरीर की जरूरत है, तो इसीलिए उसका संभाल करना चाहिए और बैलेंस. लेकिन ये जरूर हम ये सोचे, आई एम द राइडर, मैं राजा हूं, इस शरीर को जैसे मैं चला सकती हूं मैं चलाऊंगी, ये उसका अधीन नहीं है लेकिन राजा हूं. दिस इलस्ट्रेशन इज अ सिंबॉलिक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द बॉडी. द राइडर सिंबलाइजेस द सोल, द हॉर्स रिप्रेजेंट्स द फाइव फिजिकल सेंस ऑफ द टच, taste, hearing, smell and sight. You need to become a skilled rider. Horse ko bhi ride karna aise training ke bina ride nahi kar sakte hai, iske liye bhi training chahiye. To aise raja ban karke sharir ko chalane ke liye bhi sharir ka gyan chahiye, hai na, to usko achhi riti samajh karke usko ride karna hai uske upar. The process of studying meditation and cultivating and values is the way to acquire the mastery. Meditation karte karte us par hum mastery pa sakte hain. Self identification as soul or a body. Soul mana I am a light, body identification mana main kala hu, gora hu, brown hu, ye sab, main engineer hu, doctor hu, judge hu, ye sab jo sharir ke sath, main Indian hu, American hu, German hu, ये सब बातें बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाता है. लेकिन सोल कॉन्शियस माना मैं आत्मा हूं लेकिन इंजीनियर का रोल निभा रहा हूं, मैं आत्मा हूं डॉक्टर का रोल निभा रहा हूं, तो ऐसे मैं इंडियन नहीं हूं लेकिन मैं अपने शरीर, आई हैव एक्वायर्ड दिस बॉडी इन इंडिया, मैं इंडियन नहीं हूं आत्मा हूं लेकिन मैं अपना शरीर इंडिया में लिया हुआ हूं, तो ये समझ चाहिए. Innate qualities of the soul. वैसे तो हम कहते हैं आत्मा के साथ गुण है ओरिजिनल, लेकिन इस यूनिट में ये सारे गुण आत्मा के गुणों के अंदर लिया हुआ है. कॉपरेशन, हर एक वैल्यू का फिर एलोबरेशन है. कॉपरेशन, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, लव, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस एंड यूनिटी, ये सभी एक एक गुण का फिर एलोबरेशन हम किताब में देख सकते हैं. ठीक है, ओके, हो रहा इस यूनिट के बारे में. और बहुत सारी बातें किताब में लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे. वैसे क्योंकि ये सब पता है हमको आत्मा के बारे में, तो इसीलिए फिर इतना ज्यादा एलोबोरेशन नहीं की जरूरत नहीं पड़ता. ठीक है, कोई क्वेश्चंस? Any questions? Any suggestions? मेरे बारे में बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, तो अभी शरीर के बारे में क्या सुनेंगे? आत्मा इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं. हाँ, हम आपको पढ़ा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. शरीर का नाम सुमन बेन है, और वैसे वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में, पिछले ज्ञान सरोवर जब से बना है 95 से लेकर के, उसके पहले पांडव भवन में थे, तो करीब 20 साल से समर्पित हुए हैं और समर्पित जीवन जी रहे हैं. और वैसे ओरिजिनली वैसे परमधाम से है पर आत्मा, लेकिन शारीरिक रूप से बैंगलोर से हूँ, और वहाँ पढ़ाई पूरा करके वहाँ ही ज्ञान में आए, लौकिक परिवार सहित सब ज्ञान में आने के बाद फिर उसी में पलते रहे, बड़े होते रहे, दादियों की पालना लेते रहे, फिर बाद में मधुबन आ गए. ठीक है, ओम शांति.